का था, रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे हैं अलका सैनी की लिखी कहानी असली पूंजी। जिज्ञासा ने जैसे ही अपनी बेटी यक्षिता के साथ अपने पुराने कॉलेज के गेट में प्रवेश किया, उसे लगने लगा मानो ये कल की ही बात हो, जब उसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास करके उस कॉलेज में दाखिला लिया था। भले ही इस बात को बीते हुए 20 साल से ज्यादा का समय पार हो चुका था, अपने उस कॉलेज में उसे काफी बदलाव नजर आ रहा था। पार्किंग का एरिया, जहां पहले इक्का दुक्का गाड़ियां और कुछ एक स्कूटर ही नजर आते थे, वहां अब सारी जगह पर गाड़ियों और अन्य वाहनों से भरी पड़ी थी। एक दो नई बिल्डिंग्स भी नजर आ रही थी। हाँ, जो नहीं बदला था वो थे वहां के फूल पत्ते। अब भी वहां कई पुराने गार्डन उसी तरह दिखाई दे रहे थे। एक गार्डन को देखकर तो जिज्ञासा को अपने अतीत की याद आने लगी। वह यक्षिता से कहने लगी, बेटी ये वही मेरा बोटैनिकल गार्डन है, जहां हम तरह तरह की वनस्पतियों का अध्ययन करते थे। अभी भी देखो ना, कितना अच्छा दिख रहा है। आसपास देखते देखते वह प्रिंसिपल के चैम्बर तक पहुंच गई। प्रिंसिपल के कक्ष में भी उसे काफी बदलाव नजर आ रहा था। सब कुछ आधुनिक तरीके से बना हुआ लग रहा था। मन ही मन जिज्ञासा सोच रही थी कि 20 वर्ष का समय कोई कम तो नहीं होता। लगभग 2 दशक बीत चुके थे, पर अपनी घर गृहस्थी में वह इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे इतने लंबे समय के बीतने का पता ही नहीं चला। परंतु आज सब पुरानी यादें ताजा हो रही थी और वह खुद की तुलना पहले वाली शोख चंचल और तीव्र बुद्धि वाली जिज्ञासा से कर रही थी, जिसके आसपास हर समय उसकी आकर्षक छवि और होशियार होने की वजह से सहेलियों का जमघट लगा रहता था। सब कुछ होते हुए भी उसके मन के किसी एक कोने में कमी सी खलती रहती थी कि क्या घर परिवार और बच्चों की परवरिश करने के लिए ही उसने इतनी पढ़ाई लिखाई की थी। बेशक इतने सालों में गंभीरता से उसे यह सब सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली और दिवाकर के बेपनाह प्यार ने उसे कोई कमी आने भी नहीं दी थी। दिवाकर तो हर समय उसके रूप और गुणों की तारीफ एक दीवाने की तरह करते नहीं थकते थे। दिवाकर एक राष्ट्रीय कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करते थे, बावजूद उसने कभी किसी तरह की कोई कमी जिज्ञासा को महसूस होने नहीं दी थी। कभी कभी तो वह जिज्ञासा की तारीफ में कविता कहने लगते थे। आज सुबह की ही बात थी, जब जिज्ञासा कॉलेज आने के लिए तैयार हो रही थी और उसने गहरे आसमानी रंग की साड़ी पहनी, तो दिवाकर उसे तैयार होते देख पास आकर बैठ गया और उसे बड़े प्यार से निहारने लगा। तो जिज्ञासा नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई और बोली, आप तो मुझे इस तरह से देख रहे हैं जैसे कि कल ही हमारी शादी हुई हो। पूरे 19 साल बीत गए हैं हमारी शादी को। ऊपर से दिवाकर ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा था, अरे मुझे तो मेरी जान आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह लगती है। और जी चाहता है कि तुम्हें इसी तरह हर दम देखता रहूं। ये कहकर दिवाकर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। ऐसा सोचते ही जिज्ञासा को अजीब सी सिहरन होने लगी। इस तरह जिज्ञासा भी दिवाकर के प्यार में इस कदर बहती चली गई कि उसे कभी अतीत की तरफ मुड़कर देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। खुद को दिवाकर बहुत खुशकिस्मत मानते थे कि जिज्ञासा जैसी सर्वगुण संपन्न धर्म पत्नी उसे मिली, जिसकी उसके ना सिर्फ सगे संबंधी बल्कि उसके दोस्त मित्र भी तारीफ करते नहीं थकते थे और उससे ईर्ष्या भी करते थे। एक बार जब दिवाकर काफी बीमार हो गए थे तो उनके दोस्त रोहित ने तो यहां तक कह दिया था, भाभी जी आप बिल्कुल चिंता मत करें, दिवाकर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे जब आपकी आंखों में इतना विश्वास और इतनी चमक दिखाई देती है और जिस तरह से आप इसकी तन मन से इतनी सेवा कर रही हैं, तो इसे जल्दी ही आपके खातिर ठीक होना ही पड़ेगा। उसका ध्यान अतीत की यादों से तब भंग हुआ जब उसकी बेटी ने कहा, मम्मी पियन कह रहा है कि अभी तो प्रिंसिपल साहिबा व्यस्त हैं, अंदर सभी लेक्चरर्स के साथ मीटिंग चल रही है, मीटिंग खत्म होते ही वह हमें खबर कर देगा, तब तक हम उस गार्डन में बैठकर आराम से इंतजार करते हैं। अच्छा ठीक है, जिज्ञासा ने उत्तर दिया। फिर वह पियन से पूछने लगी, अच्छा जरा ये तो बताओ कि अभी प्रिंसिपल कौन है? अरे क्या आप नहीं जानती हैं? इस शहर की जानी मानी हस्ती अनीता खुराना ही तो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। और सुना है वह किसी जमाने में इसी कॉलेज में ही पढ़ा करती थी। मैडम क्या आपने पढ़ा नहीं? इधर देखिए इस नेम प्लेट पर उनका नाम भी तो लिखा हुआ है। अनीता खुराना का नाम उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा और वह अपने दिमाग पर जोर डालने लगी तो अपने अतीत की यादों में खो गई। कहीं ये वही अनीता खुराना तो नहीं जो कभी उसकी सबसे नजदीकी सहेली हुआ करती थी? उस समय उसके साथ साथ अनीता का नाम भी वरीयता सूची में आया था। वह भी काफी होशियार और होनहार लड़की थी और हर समय कुछ ना कुछ नया सीखने की ललक ने उसे जिज्ञासा के काफी नजदीक कर दिया था। धीरे धीरे कर उनकी यह नजदीकी घनिष्ठता में बदलती गई। उसकी बाकी सहेलियां भी जिज्ञासा को हमेशा घेरे रहती थी और वह भी हर समय उन सभी की समस्याओं का समाधान करने को तत्पर रहती थी। भले ही कोई भी विषय कितना भी कठिन होता था, फिर भी जिज्ञासा उनका उत्तर खोजने में उत्सुकता दिखाती थी। कभी कभी तो वह अपने अध्यापक से भी इस बारे में मदद लेती थी। अनीता का तो कहना ही क्या था, वह तो घर पर जिज्ञासा के ना सिर्फ सारे क्लास नोट्स की कॉपी करवाकर अपने साथ ले जाती थी बल्कि उसकी परीक्षाओं की हर उत्तर तालिकाएं भी अपने साथ घर ले जाकर ध्यान से देखती थी। ये सब देखकर जिज्ञासा मन ही मन फूली नहीं समाती थी। उसे अपने आप पर गर्व महसूस होने लगता था। अपने नोट्स की इतनी इज्जत देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो जाता था। जिज्ञासा जितनी तेज दिमाग थी उतने ही चंचल स्वभाव की भी थी। उसे कोई ना कोई शरारत करने में बहुत मजा आता था, या यूं कहा जाए कि एकदम जिंदा दिल इंसान थी। इसलिए अपनी सहेलियों में ही नहीं वरन वह अध्यापकों की भी प्रिय शिष्या रहती थी। उसकी किसी भी शरारत को अध्यापक इस तरह नजरअंदाज कर देते थे जिस तरह माँ अपने बच्चों की शरारतों को अनदेखा करती है। सभी अध्यापक उसके व्यक्तित्व से प्रभावित रहते थे। कॉलेज की स्नातक डिग्री तक तो अनीता और जिज्ञासा की दोस्ती चोली दामन के साथ के रूप में विख्यात थी, मगर स्नातक डिग्री में दोनों के विषय अलग अलग थे। इसी वजह से पहले की तुलना में वे एक साथ बहुत कम रह पाती थीं। यहां तक दूसरे दोस्त भी कह उठते थे, ऐसी क्या बात है आजकल जिज्ञासा और अनीता एक साथ नजर नहीं आती हैं? कहीं दोनों में कोई मतभेद तो नहीं हो गया है? उन्हें नजदीक से जानने वाले दलील देते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों किताबी कीड़े हैं, परंतु अब दोनों के विषय बदल गए हैं, तब कहां से एक साथ नजर आएंगे। इस तरह की टिप्पणियां उनके कानों में अक्सर आती रहती थीं, मगर उनके दिल में हमेशा एक दूसरे के लिए दोस्ती का भाव बना रहता था। पर स्नातक की पढ़ाई खत्म होते होते जिज्ञासा की दिवाकर के साथ शादी हो गई। उसे अभी भी वह बात अच्छी तरह से याद है जब उसकी शादी में अनीता खूब नाची थी। उसका नाच देखते ही बनता था। सब परिजन लोगों ने उसके नाच की खूब तारीफ की थी। शादी के बाद जिज्ञासा अपने घर संसार में इस कदर व्यस्त रहने लगी कि धीरे धीरे वह अपनी सारी पुरानी सहेलियों को भूलती चली गई। उसने अपने लिए एक अलग दूसरी दुनिया की रचना कर ली थी। दिवाकर को पति के रूप में पाकर वह सब कुछ भूल गई थी और खुद को धन्य मानती थी। दिवाकर भी तो एक आदर्श पति की तरह जिज्ञासा की हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता था। अनीता खुराना का नाम सुनकर तथा उसका नाम नेम प्लेट पर देखकर उसे अचरज के साथ साथ एक हीन भावना का एहसास होने लगा था। जहां अपनी सहेली को इतने बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल की कुर्सी पर पाकर उसका मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था, वहां अपने आप को एक गृहपत्नी के सीमित से दायरे में पाकर उसका मन दुखी होने लगा था। अगर ये वही अनीता खुराना निकली तो उसे देखकर क्या सोचेगी, क्या कहेगी, जिज्ञासा तुम अपने किसी मुकाम को हासिल नहीं कर सकी, शादी करवा कर तुम सिर्फ एक साधारण गृहिणी बनकर ही रह गई। क्या उत्तर देगी वो इस बात का? तुम्हारे नोट्स पढ़कर मैं आज इस प्रतिष्ठित पद तक पहुंच गई हूं, मगर तुम्हें तो मुझसे कई गुना आगे होना चाहिए था। तरह तरह के विचार उसके मन में आ जा रहे थे। वह अपने आप को एक झंझावत में फंसा हुआ पा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस तरीके से वह उसके सामने जाएगी। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि अनीता उसे पहचानने से ही मना कर दे, या फिर उससे अच्छी तरह बात ही ना करे। उसके मन में तरह तरह के विचारों की आंधी चल रही थी कि तभी चपरासी गार्डन में आकर उनको आवाज देने लगा। मैडम, मैंने आपके बारे में प्रिंसिपल साहिबा को बता दिया है, वह आपको अपने कक्ष में बुला रही हैं। जिज्ञासा अपने आप को फिर से मानसिक तौर पर तैयार कर अपनी बेटी से कहने लगी, यक्षिता चल, प्रिंसिपल मैम हमें बुला रही हैं। जिज्ञासा ने कई तरह के विचारों में डूबे डूबे किसी तरह अपनी बेटी के साथ प्रिंसिपल के चैम्बर में झिझकते हुए कदमों से प्रवेश किया। सामने अपनी बचपन की सहेली को पाकर वह एक तरफ खुश थी तो दूसरी तरफ अजीब सी घुटन महसूस कर रही थी। इधर अनीता ने भी जिज्ञासा को पहचान लिया और उसे देखते ही वह अपनी सीट से खड़ी हो गई और आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। जिज्ञासा को सामने पाकर अनीता बहुत खुश नजर आ रही थी, मगर जिज्ञासा की झिझक अभी भी मन से दूर नहीं हुई थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। यह देखकर अनीता कहने लगी, जिज्ञासा, तुम्हें यहां देखकर मैं कितनी खुश हूं, तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाओगी। कैसी हो तुम? दिवाकर कैसे हैं? मम्मी पापा? अरे तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और खिली हुई नजर आ रही हो। एक ही सांस में बहुत कुछ भूल गई थी वह। अब जाकर जिज्ञासा की झिझक खत्म हुई। मम्मी को अपनी पुरानी सहेली के साथ मिलता देख यक्षिता कहने लगी, मम्मी आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा बाहर कॉलेज घूम कर आती हूं। अनीता ने यक्षिता को अपने पास बुलाया और प्यार से पुचकारने लगी। यक्षिता को देखते ही उसके भीतर का सिमटा हुआ ममत्व जाग उठा और प्यार से उसकी ओर देखते हुए कहने लगी, जिज्ञासा इतनी ही स्मार्ट, इतनी ही सुंदर, किसी भी मामले में तुमसे कम नहीं है। बेटी की तारीफ सुनकर जिज्ञासा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और फिर उसने अनीता की निजी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया। अनीता, तुम तो मुझे शादी के बंधन में बांधकर ऐसे गायब हो गई जैसे अलादीन के चिराग का जिन। अच्छा बताओ, तुमने शादी कब की? और ना ही तुमने मुझे अपनी शादी में बुलाया। क्या करते हैं तुम्हारे पतिदेव? प्रश्नों की बौछार करते हुए उसने आगे कहना जारी रखा, अरे मैं तो मन ही मन बहुत डर रही थी कि तुम मुझे पहचानोगी भी या नहीं। आज तुम इतने बड़े पद पर आसीन हो। ये सारी बातें सुनकर अनीता भाव विह्वल हो उठी। उसकी आंखें आंसुओं से नम हो गई। वह कहने लगी, कैसी बात करती हो जिज्ञासा, मैंने आज जिस मुकाम को हासिल किया है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है। अगर तुम मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती तो क्या मैं आज इस पद पर आसीन होती? मैं जीवन भर इस बात को भूल नहीं पाऊंगी। मेरा हृदय सदैव तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रहेगा। यह कहकर उसने एक दीर्घ सांस छोड़ी और कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। उसे चुप देख जिज्ञासा से रहा नहीं गया, वो कहने लगी, अनीता, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, अन्यथा आजकल के जमाने में कौन किसकी सुध लेता है? और अगर कोई जरा सी भी कामयाबी हासिल कर लेता है तो बात करना तो दूर की बात, पहचानने से भी इनकार कर देता है। खैर छोड़ो इस बात को, तुम अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताओगी? पहले तो अनीता कुछ देर तक चुप रही, फिर जिज्ञासा की तरफ देखकर कहने लगी, तुम तो सिद्धार्थ को जानती होंगी, तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था, एमए फाइनल में। जिज्ञासा ने हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ याद आया, वो मेरा क्लासमेट था, अच्छी तरह से जानती हूँ सिद्धार्थ को, वह तुम्हारा खास दोस्त हुआ करता था, तुम लोग तो काफी पहले से एक दूसरे को जानते थे। हाँ जिज्ञासा, जैसे ही सिद्धार्थ की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई, वैसे ही उसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उसी समय मेरी भी कॉलेज में लेक्चरर के रूप में नौकरी लग गई थी, और फिर हमने धार्मिक रीति रिवाजों और माता पिता की मर्जी लेते हुए शादी कर ली। कुछ साल तक हमारा घर संसार ठीक चलता रहा, और इसी बीच मैंने एक बच्ची को भी जन्म दिया। पर कुछ समय बाद सिद्धार्थ का दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, हम दोनों की नौकरी अलग अलग जगह पर होने की वजह से हम लोग अलग अलग रहने के लिए मजबूर थे। फिर क्या कहूं, कहते कहते अनीता उदास और काफी भावुक हो गई और अपने को थोड़ा संभालते हुए फिर से कहने लगी, बस धीरे धीरे हम दोनों में अक्सर वैचारिक मतभेद रहने लगा, बात इस कदर बढ़ गई कि तुम्हें क्या बताऊं जिज्ञासा। इतना कहते ही अनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। जिज्ञासा अनीता को सांत्वना देने के लिए उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अनीता, मैं तुम्हारी पुरानी सहेली हूं, भले ही हम इतने सालों से एक दूसरे से मिल नहीं पाए, पर मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचा करती थी। आज जो भी मन की बातें हो कहकर अपना दिल हल्का कर लो। अनीता ने खुद को संभालते हुए फिर से कहना शुरू किया, शुरू शुरू में तो सिद्धार्थ हर छुट्टी में हमारे पास, यानी मेरे और मेरी बेटी चंदा के पास भागे चले आते थे, और जब मुझे छुट्टी होती थी तो मैं सिद्धार्थ के यहां चली जाती थी चंदा को लेकर। पर फिर सिद्धार्थ का आना धीरे धीरे कम होने लगा, वह हर बार यही बहाना बनाता कि ऑफिस की जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है इसलिए छुट्टी नहीं मिल पाती। एक बार यहां अचानक स्कूल और कॉलेज में छुट्टी हो गई तो चंदा पापा के पास जाने की जिद करने लगी और कहने लगी कि मम्मी, हम पापा को सरप्राइज देंगे। इतना कहकर अनीता खामोश हो गई कुछ देर के लिए। जिज्ञासा ने उसे पानी पीने को कहा और इतनी देर में पियून भी चाय लेकर आ गया। अनीता ने जिज्ञासा को चाय पीने को कहा, फिर चाय पीते पीते अनीता अपनी बात पूरी करते हुए एक लंबा सांस लेते हुए बोली, फिर फिर क्या बताऊं तुम्हें जिज्ञासा। हम दोनों को सिद्धार्थ के पास पहुंचते पहुंचते तकरीबन रात हो गई थी। बस से उतरकर हम लोग रिक्शा करके सीधा घर पहुंच गए। घर की लाइट्स जल रही थी और वैसे भी हम दोनों ने अपने अपने घर की एक एक चाबी एक दूसरे को दे रखी थी ताकि वक्त बेवक्त कोई परेशानी ना आए। बस जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सिद्धार्थ को अपने ऑफिस की ही एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। यह तो अच्छा था कि अभी चंदा ने कुछ नहीं देखा था, क्योंकि उसे पार्क में ही उसकी एक हम उम्र सहेली मिल गई थी। बस फिर तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। वह रात मेरे जीवन की सबसे काली रात थी। बात को इस कदर बढ़ता देख हम लोग कानूनी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। और इन सारी बातों का खामियाजा मेरी बेटी को भुगतना पड़ा। अनीता की बातें सुनकर जिज्ञासा का मन भी भर आया और उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अनीता से पूछा। बड़ी ही दुख भरी कहानी है तुम्हारी अनीता। कितनी बड़ी है तुम्हारी लड़की और आजकल वह किसके साथ रहती है? क्या सिद्धार्थ से तुम्हारी अब कोई बातचीत होती है? एक गहरी सांस लेते हुए अनीता ने कहा। जिज्ञासा, हमारे तलाक की वजह से चंदा को गहरा सदमा लगा। उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। वह हमेशा चुपचाप रहने लगी। वह हम दोनों में से किसी के भी साथ नहीं रहना चाहती थी। आजकल वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है और मसूरी में हॉस्टल में रहती है। मेरा जब मन करता है तो मैं उससे मिल आती हूँ। रही बात सिद्धार्थ की तो उसने तो तलाक के बाद कभी चंदा से मिलने की कोशिश तक नहीं की और किसी से मुझे सुनने को मिला था कि उसने अपनी उस सहयोगी कर्मचारी के साथ शादी कर ली थी। अब क्या फायदा उन बातों को याद करने का? कहते कहते अनीता फफक फफक कर रोने लगी और रुंधे हुए गले से कहने लगी, तुम्हारी बेटी यक्षिता को देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। तुम बहुत खुशनसीब हो जो इतना प्यार करने वाला पति और घर संसार मिला है। मुझे देखो, भीतर से मैं पूरी तरह से खोखली हो चुकी हूं। जानती हो जिज्ञासा, हमारी असली संपत्ति तो हमारा घर परिवार, हमारे बच्चे होते हैं। वही हमारी वास्तविक पूंजी है। मुझे भागी को देखो, इतने उच्च पद पर आसीन होने के बावजूद भी आज खाली हाथ दामन बिछाए खड़ी हूं। अभी आप सुन रहे थे अलका सैनी की लिखी कहानी असली पूंजी। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।